SBS हिंदी।
दोस्तों, भारत में चुनाव का माहौल बहुत ही नजदीक आ चुका है। बस चुनाव होने ही वाले हैं या दस्तक दे रहे हैं, यूं कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे में चलिए आज बात करते हैं कि क्या खास बात रहेगी इस जो 2019 के चुनाव हैं उसमें, किस तरह से वो अलग होंगे 2014 के चुनाव है उससे। और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि जो ओवरऑल सिनेरियो है भारत में इलेक्शन को लेकर, विपक्ष को लेकर, वो क्या है। और ये पूरे विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत कुमार जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। प्रशांत जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद हरिता जी।
प्रशांत जी, जब भी भारत में चुनाव होते हैं बहुत ही रोमांचक माहौल होता है, तो सबसे पहला प्रश्न कि क्या सिनेरियो है इस वक्त भारत में? क्या अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो जारी है? किस तरह से विपक्ष वहां पर खड़ा है और अपनी भूमिका निभा रहा है?
चुनाव तो आप जानती हैं हरिता जी की, भारत में दुनिया के सबसे, मैं कहूंगा, बहुरंगी और मजेदार किस्म के चुनाव होते हैं और आपको इंसानी जिंदगी के तमाम भावनात्मक लहरों का बहुत ही जबरदस्त सा एक निरूपण होता हुआ दिखता है जमीन पे। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि कई लोग का ये मानना है कि भारत की दशा दिशा को तय करने वाला ये चुनाव है। इस लिहाज से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है सत्ता पक्ष पर हाल के दिनों में कि उन्होंने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो संस्थागत आजादी है उस पर आघात किए हैं। और कहीं ना कहीं एक जो वैकल्पिक विचार है भारत को देखने या समझने का, उसको निरूपित करने वाली एक वैचारिक दक्षिणपंथ की पार्टी अभी सत्ता में है और उनका मानना है कि उनको और भी समय अपने हिसाब के नए भारत, जो न्यू इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, वो उसके लिए और चाहिए उनको समय। तो ये चुनाव इस दो तरह की वैचारिकी और इस दो तरह के चिंतन धाराओं के बीच कहीं ना कहीं एक जनमत संग्रह का भी चुनाव है ये, कि किस तरह के नए भारत का नजरिया चाहिए जनता को। मैं इस चुनाव को इस लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो 2014 में जिस तरह की एक लहर थी मोदी के समर्थन की, वो तो इस बार उतनी नहीं दिखती हमें जमीन पे। लेकिन यकीनन दो तरह के नैरेटिव देते हुए आप दोनों मुख्य विपक्षी गठबंधनों को, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भाजपा बनाम कांग्रेस का चुनाव है, ये 37 पार्टियों का गठबंधन भाजपा के पास भी है, वो ये नहीं कह सकते कि एक अकेले मोदी बनाम सबकी लड़ाई है। और यूपीए और बाकी जो तीसरा पक्ष है, जो अगर गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके पास भी एक मजबूत सांगठनिक ताकत है और एक मजबूत तरीके से वो भी चुनाव में लड़ रहे हैं। तो विस्तार के लिहाज से, सीट के लिहाज से, क्षेत्रीय भावनाओं के लिहाज से और कहीं ना कहीं जो एक केंद्रीयता है उत्तर भारत की भाजपा के उभार में, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5-6 राज्य मिला के ही एनडीए को 272 में 226 सीट पिछले चुनाव में उन्होंने दी थी, तो वैसा तो यकीनन होता हुआ हम नहीं देख पा रहे हैं इस बार।
अगर आपको कुछ यूनिकनेस की बात करें कि किस तरह से 2019 के जो चुनाव हैं वो अलग हैं 2014 से?
2014 का चुनाव हरिता जी यकीनन बदलाव की कामना का चुनाव था और आपको याद होगा कि मोदी ने अपने को एक सशक्त भारत के एक सशक्त नेता के तौर पे दिखाया था और जिसका जनता को अपार समर्थन भी मिला। 2014 के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो एक राहुल गांधी के नेतृत्व में एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर की राजनीति है, जो कहीं ना कहीं एक जनधारा की राजनीति की तरफ फिर से कांग्रेस का एक उभार हुआ है और एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स अगर आप भारत में होता हुआ दिखेंगे जनता को, कहीं ना कहीं जो मैं देख पाता हूँ एक राजनीति विज्ञान के छात्र के तौर पे, कि एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, एक बहुत तरह की कामनाओं की राजनीति उनके पास, एक बहुत तरह की उम्मीदों की राजनीति जनता पसंद करती है। इसलिए आप देखेंगे कि इम्पावरमेंट के मैकेनिज्म बहुत सारे दोनों तरह के मुख्य संगठनों ने सहयोग द्वारा आपस में जो एक कोलिशन गढ़ा है दोनों में, दोनों की तरफ से इस तरह के चुनावी वादे आ रहे हैं। कहीं उज्ज्वला गैस योजना की बात है, कहीं मुफ्त में बिजली देने की बात है, कहीं पे आप देखेंगे कि पुराने पेंशन व्यवस्था की तरफ जाने की बात है, कहीं न्यूनतम आय का या 33% आरक्षण का सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार की। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का, सबका साथ सबका विकास का जो एक नरेटिव है, या कहीं ना कहीं जो देश को सुरक्षित हाथों में मजबूत सरकार देने का जो एक नरेटिव है, उसके विकल्प में एक पैरेलल, एक समानांतर, एक दूसरा नरेटिव गढ़ने की रणनीति पे काम हो रहा है। अब ये हमको और आपको देखना बाकी है कि ग्रामीण भारत में जो असली डिसाइसिव मतदाता है, जहां से कि सचमुच देश के जनतंत्र की असली ताकत आपको ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे, वो किस तरह से सोच पा रहा है। वो अभी भी अपने पत्ते उसने साफ नहीं किए, उसने अपने तरह के मतदान व्यवहार का अभी तक प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन ये यकीन मानिए कि अगर उनके जीवन में वर्तमान सरकार ने डिस्ट्रेस के सिवा और कुछ नहीं दिया है, अगर GST की वजह से, अगर डिमोनिटाइजेशन की वजह से कुछ खामियां रही हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में, और उसकी वजह से ग्रामीण भारत में एक उम्मीदों पे आघात पहुंचा है, तो इस सरकार के प्रदर्शन पे उसका असर आपको होता हुआ दिखेगा। 2019 का चुनाव इस अर्थों में भी बेहद महत्वपूर्ण है कि संभवतः पहली बार इस चुनाव में आपको गैर कांग्रेस, गैर भाजपा एक मजबूत तृतीय पक्ष भी अपनी दावेदारी करता हुआ दिखता है, और जिसके पास संभवतः एक ज्यादा स्थानीय स्तर के मजबूत मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं विशेष राज्य के दर्जे को लेके, चाहे आंध्र में, या आप सांप्रदायिकता या हिंदू राजनीति के सवाल को लेके पश्चिम बंगाल में, या आप बिहार जैसे राज्यों में और समान विकास के मुद्दों को लेके, या कहीं संविधान के ऊपर आए खतरे, या इस तरह की जो तमाम मुद्दे हैं जिसमें की राजनीति के भी अपने मुद्दे हैं और विकास और अर्थव्यवस्था से जनित भी अपने मुद्दे हैं, ये दोनों मुद्दों को आप प्ले करता हुआ देखेंगे। वो जमीन पे आपको अलग अलग तरीके से विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, राजनीतिक समूहों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो ये मैं मानता नहीं कि सिर्फ दो या तीन ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव 2019 के जबरदस्त तरीके से स्थानीय चुनाव भी होंगे, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि मैं दो या तीन मुद्दे या राष्ट्रवाद के ही मुद्दे एकमात्र मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि स्थानीयता के भी मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे इस चुनाव में।
बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही गहरी ग्राउंड रियलिटी के साथ आपने हमसे बात की, हमारे लिए आपने समय निकाला। SBS हिंदी की टीम की तरफ से मैं हरिता आपका धन्यवाद करती हूँ।
धन्यवाद हरिता जी, और सारे दर्शकों को नमस्कार।
आपके विचार हमें बताए, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।